फकिंग दामोद, आंसर मी। आस्तिक के तेज चिल्लाने पर अरुणिमा की आंखें कसकर बंद हो गईं, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा करीब था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था और अरुणिमा उसकी उन लाल आंखों से बुरी तरह डर गई थी। जिस तरीके से आस्तिक उसके करीब आ रहा था और उसके बदन को बुरी तरह दबा रहा था, अरुणिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। आस्तिक ने गुस्से से चीखते हुए कहा, बताओ मुझे, तुम प्रेग्नेंसी के बारे में जानना क्यों चाहती थी? तुम इतनी एक्साइटेड क्यों थी? अगर तुम कहते कहते आस्तिक अचानक रुक गया और हैरानी से अरुणिमा को देखने लगा। उसकी नज़रों में अजीब सी खोज थी। अरुणिमा ने झट से अपनी आंखें खोली और उसकी भयंकर आंखों में देखा। उसका दिल डर की गहराई में समा गया था, आत्मा जैसे जम चुकी थी। जब अरुणिमा घर आई थी तभी उसे एहसास हो गया था कि आस्तिक को शक हो चुका है और वो इस बारे में ज़रूर सवाल करेगा। उसे कुछ ना कुछ करना ही था। अगर आस्तिक का शक यकीन में बदल जाता तो वो अरुणिमा को उसके बच्चों के साथ मार डालता। मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, ये सोचते हुए उसने खुद को किसी भी तरह स्थिति से निकालने के लिए तैयार किया। आस्तिक ने और भी ज्यादा क्रूर निगाहों से उसे देखा, जिससे उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। आस्तिक ने उसकी कलाई इतनी कसकर पकड़ रखी थी कि उसकी पकड़ अरुणिमा की बोलने की शक्ति तक को ख़त्म कर रही थी। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? उसने बर्फ़ जैसी ठंडी आवाज़ में सवाल किया। उसकी नज़रें अरुणिमा की आंखों की गहराई में उतर गईं, जैसे वो उसके दिल से सच्चाई निकालने की कोशिश कर रहा हो। अरुणिमा ने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने बच्चों को खोने का डर उस पर इतना हावी हो चुका था कि वो आस्तिक को इस बात का भ्रम भी नहीं होने देना चाहती थी कि वो सच में प्रेग्नेंट है। उसने गहरी सांस ली और खुद को अगले सवाल के लिए तैयार किया। इतना तो वो आस्तिक को जान चुकी थी कि उसे कैसे उसके पागलपन के साथ डील करना है। जिस तरीके से आस्तिक उससे सच उगलवाना चाहता था, अरुणिमा को समझ आ गया था कि उसे कैसे बहकाकर सच्चाई से दूर रखना है। अपनी सारी हिम्मत बटोरते हुए उसने धीरे से दूसरी तरफ देखते हुए कहा, नहीं आस्तिक, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। अरुणिमा की आवाज़ लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ इतना कहने से आस्तिक का शक खत्म नहीं होगा। उसे यकीन दिलाने के लिए और भी कुछ कहना पड़ेगा। अपने दांत पीसते हुए आस्तिक गुस्से में फूंककारा, तुम झूठ बोल रही हो। अरुणिमा जल्दी से धीमी और कांपती आवाज़ में बोली, नहीं, मैं सच कह रही हूँ, पर कुछ हुआ था जिसकी वजह से मैं डर गई थी, लेकिन वो सब बेवजह का डर था। अरुणिमा की बात सुनकर आस्तिक की पकड़ उसकी कलाई पर ढीली पड़ने लगी। उसने गहरी सांस ली और गुस्से में घूमकर दांत पीसते हुए भारी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ था? अरुणिमा ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, दरअसल जब हम डॉक्टर नीतू के पास टेस्ट के लिए गए थे, उससे पहले मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही थीं जो इससे पहले कभी नहीं हुई। जैसे? आस्तिक ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। मुझे अंडे की महक से उल्टी आ रही थी, दाल की स्मेल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। तब मुझे लगा कि अगर ये सब प्रेगनेंसी की वजह से हुआ तो क्या होगा, इसलिए जब हम हॉस्पिटल गए थे तो मैंने डॉक्टर नीतू से इस बारे में पूछा। उन्होंने चेक किया और कन्फर्म किया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सब चीज़ें शायद जगह और माहौल बदलने की वजह से हुई थी। अब तुम ही बताओ, अगर ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर तुम्हें क्यों नहीं बताती? आस्तिक ने संदेह भरी नज़रों से उसे घूरते हुए पूछा, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरुणिमा ने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, तुम्हें बताकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी तुम लावण्या के साथ सरोगेसी प्लान कर रहे थे, मुझे नहीं लगा कि ये बात इतनी बड़ी थी कि तुम्हें परेशान करूं। आस्तिक का चेहरा थोड़ा नॉर्मल ज़रूर हो गया था, लेकिन उसका शक अभी भी कुछ हद तक कायम था। उसने अरुणिमा से पूछा, तो फिर तुम मिसेज राय और उनकी बेटी से प्रेगनेंसी से जुड़ी बातों में दिलचस्पी क्यों ले रही थी? अरुणिमा थोड़ा सा डर गई। वो खुद भी नहीं जानती थी कि आस्तिक इन सब बातों को इतनी बारीकी से नोट करेगा, लेकिन वो आस्तिक को इस बारे में नहीं बता सकती थी। उसने जल्दी से कहा, तो और मैं क्या करती वहाँ बैठकर, और क्या बात करती? वहाँ पर सिर्फ औरतें बैठी हुई थीं और वो दोनों माँ बेटी बात भी तो इसी टॉपिक पर कर रही थीं। तुम ही तो मुझे वहाँ लेकर गए थे, अब वहाँ जाकर मुझे एक अच्छी बीवी बनने का नाटक तो करना ही था ना। वो दोनों कोई और बात ही नहीं कर रही थीं तो ना चाहते हुए भी मुझे वही सुनना पड़ रहा था। धीरे धीरे आस्तिक का चेहरा सामान्य हो गया और वो अरुणिमा को नॉर्मल नज़रों से देखने लगा। उसने धीरे से अरुणिमा की बाजू को छोड़ा और उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर ऐसी बात है तो हम आज के बाद मिसेज राय के यहाँ नहीं जाएंगे और ना उन्हें अपने यहाँ बुलाएंगे। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो तुम्हारे दिमाग में माँ बनने का ख्याल भी डालें। तुम्हारे दिमाग में ऐसी फालतू बातें आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर रहना चाहिए। पता है ना तुम्हारी बॉडी मेरे लिए कितनी प्रेशियस है? अरुणिमा ने देखा कि आस्तिक नॉर्मल हो गया है तो उसने सुकून से हामी भरी। कम से कम अभी के लिए तो आस्तिक ने उस पर भरोसा कर लिया था। धीरे से झुकते हुए आस्तिक ने अरुणिमा की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और वहां पर हिक्की देने लगा। अरुणिमा की हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगी और वो अपना निचला होंठ दबाते हुए आस्तिक को महसूस करने लगी। उसकी गर्दन को किस करते हुए आस्तिक उसके कान के पास आया और उसकी कान की लोब को चूमते हुए फुसफुसाया, तुम अपनी गोलियां ले रही हो ना? अरुणिमा की आंखें, जो एक मदहोशी में बंद हो गई थीं, आस्तिक की आवाज़ सुनकर एकदम से खुल गईं।
वो डर गई क्योंकि आस्तिक प्रेगनेंसी रोकने वाली गोलियों की बात कर रहा था, वो गोलियां जो उसे प्रेग्नेंट नहीं होने देंगी। उसने जल्दी से हामी भरी और कहा, हाँ मैं ले रही हूँ। आस्तिक उसके कान को चूमते हुए धीरे धीरे उसके गालों पर अपने होंठ फिराने लगा और उसके होंठों के पास आकर बोला, निशा ने तुमसे अपना नंबर एक्सचेंज किया है, वो जरूर फोन करके तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में और बातें करेगी। मैं नहीं चाहती कि तुम उस औरत से कोई रिश्ता रखो। हम यहाँ वैसे भी ज्यादा दिन नहीं रुकने वाले हैं, अगले हफ्ते हम दोनों वापस मुंबई जा रहे हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उन लोगों से ज्यादा मेल जोल ना रखो। अरुणिमा तेजी से सांस ले रही थी। उसने जल्दी से कहा, मुझे क्या पड़ी है उन लोगों से रिश्ता रखने की, तुम्हीं ने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया था, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी। आस्तिक ठंडी आवाज में बोला, ठीक है फिर, और जानने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे के अलावा और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है? अगर तुम मेरी हर बात मानोगी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। उसकी बात सुनकर अरुणिमा का डर और ज्यादा गहराने लगा। वो अचानक बोल पड़ी, बच्चा नहीं चाहिए तो लावण्या? आस्तिक ने उसे किस करना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखने लगा। दोनों के चेहरे एक दूसरे के करीब थे। आस्तिक उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, वो दो दिन जब मैं बहुत परेशान था और अपने कमरे में अकेला था, तब लावण्या मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी। बार बार वो मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे देखकर भी मेरा उसके करीब जाने का कोई इरादा नहीं हुआ। बस इसी बात ने मुझे एहसास कराया कि कम से कम लावण्या से तो मुझे सरोगेसी के जरिए बच्चा नहीं चाहिए। आस्तिक थोड़ा रुका और फिर बोला, मैंने उसे बच्चों के बदले पैसे देने का वादा किया था, पर जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे उसका कोई बच्चा नहीं चाहिए तो मैंने उसे जाने के लिए कह दिया, बदले में वो पैसे लेकर चली गई। हाँ, उसने अपना काम नहीं किया, लेकिन मुझे पैसे देने पड़े क्योंकि ये सब उसने पैसों के लिए ही किया था।
आस्तिक ने गहरी सांस ली और अरुणिमा के चेहरे को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहा, और तब मुझे एक बात का एहसास हुआ, लावण्या या कोई और भी मुझे उस हद तक पागल नहीं कर सकता जितना तुम कर सकती हो। जितना मैं तुम्हारे लिए ऑब्सेस हो रहा हूँ उतना मैंने आज तक किसी के लिए महसूस नहीं किया। किसी के पास भी वो चीज़ नहीं है जो तुम्हारे पास है।